अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 63। विषयों का ध्यान करने से क्या होता है? संग होता है, संग से आसक्ति उत्पन्न होती, काम होता है, काम पूर्ण नहीं होने पे क्रोध होता है और पूर्ण हो जाता है तो लोभ होता है। तो अब उसके बाद वाला बोध बोल रहे हैं, क्रोध होने से क्या होता है? क्रोधाद भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो अर्थ बड़ा स्पष्ट है, क्रोध से सम्मोह यानी सम्यक मोह उत्पन्न होता है, बढ़िया वाला मोह, और सम्यक मोह से स्मृति की विभ्रम हो जाता है, भूल जाता है व्यक्ति, स्मृति से स्मृति भ्रंश होने से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि नाश होने से वह प्रणश्यति भौतिक भोग में वापस गिर जाता है। क्रोध से अनुवाद, क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भव कूप में पुनः गिर जाता है। एक प्रश्न उठा सकते हैं आप कि मनुष्य तो भव कूप में पहले ही से गिरा हुआ है, तो अब ये क्यों बोल रहे हैं कि पुनः गिर जाता है? अर्थात ऐसे समझिए, कोई व्यक्ति कुएं में गिरा हुआ है, अब उसने रस्सी पकड़ी, अब ऊपर चढ़ना चाहता है तो ऊपर चढ़ने के प्रोसेस में तो है, लेकिन फिर विषयों का ध्यान करने पड़ा तो फिर नीचे से गिर पड़ेगा। ये कहने का अर्थ, जैसे आप सुबारी मुनि के बारे में जानते हैं, ये पास में इनका आश्रम था, बढ़िया से भजन कर रहे थे, 10,000 साल भजन किया, एक वैष्णव अपराध हो गया था तो फिर भोगों में लग गया। ये ध्यान देना चाहिए कि वो हमेशा के लिए नहीं लगे, कुछ साल तक लगे, उसके बाद फिर वह भगवान उनको स्मृति दिलाई, लेकिन ये ध्यान देने वाली बात है कि व्यक्ति पुनः कूप में गिर जाता है, कूप मतलब फिर से भोगों में लग जाता है। तो अभी हम टीका पढ़ेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा, गीताभूषण टीका। उस क्रोध से कार्य अकार्य का विवेक समाप्त हो जाएगा, अर्थात सम्यक मोह। एक बहुत सुंदर उदाहरण है, लीला आप जानते हैं, विश्व रूप का वध इंद्र ने क्रोध में कर दिया। क्यों किया था? क्योंकि वह दैत्यों को भी क्या कहते हैं, यज्ञ आहुति दे रहे थे, तब वह विचार नहीं कि बिल्कुल निरपराधी हैं, ये ब्राह्मण हैं और ये मेरे गुरु हैं। आपको पता होगा कि उन्होंने नारायण कवच दिया, सब भूल गए और क्रोध में इस प्रकार से वध किया। एक जगह और भी क्रोध में एक ब्राह्मण की हत्या करे थे इंद्र, और वो है स्वयं दधीची ऋषि। पता होगा आपको, जब उन्होंने घोड़े के सिर से अश्व ब्रह्म विद्या दिया तो फिर इंदिरा करके गला काट दी, वो अलग बात है कि फिर से उनका गर्दन जोड़ दी गई। तो आप ये देख सकते हैं कि क्रोध में व्यक्ति भूल जाता है कि उसे करना क्या है और क्या नहीं करना है, कार्य और कार्य का विवेक एकदम समाप्त हो जाता है। बहुत डेंजरस है ये। इस सम्मोह से अपनी इंद्रियों को निग्रह करने के विषय में जो उसकी योजनाएं हैं उनकी विस्मृति हो जाती है, इसे कहते हैं स्मृति विभ्रमः। ये समझ में आया? मुझे अपनी इंद्रियां संयमित करनी चाहिए, मैं भक्ति कर रहा हूं या योग पथ पे लगा हुआ हूं, यह भूल जाता है व्यक्ति। यह भी भूल जाता है कि अगर दोबारा जन्म लेना पड़ा तो मां के गर्भ में कितना कष्ट होगा, बल्कि मन बोलने लगता है अरे देखा जाएगा। बताओ, देखना चाहते हो? इस प्रकार से होता। बहुत अच्छा अच्छा अर्थ है। हाँ, पहला सम्यक मोह का अर्थ क्या है? विवेक समाप्त हो जाएगा। स्मृति विभ्रमा मतलब इंद्रियों का निग्रह करना है, ये भूल जाएगा। इस विस्मृति से आत्मज्ञान प्राप्त करने का निश्चय ध्वस्त हो जाता है। देखिए, निश्चय ये बुद्धि में ही होता है, ये तो स्पष्ट है, इसमें तो समझाने की जरूरत नहीं है। और आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए इंद्रिय निग्रह करना होगा, ये तो हमने सीखा था, इंद्रियों को संयमित करना होगा। तो जब भूल गया कि इंद्रिय संयमित करना है तो बुद्धि का सारा निश्चय ही समाप्त हो गया। रिलेशनशिप समझ पा रहे होंगे आप? समझ रहे हैं? कई बार हम देखते हैं इस प्रकार से, कुछ साल भक्ति करने के बाद लोग भक्ति को त्याग देते हैं। क्यों? क्योंकि सोचते हैं कि इंद्रिय निग्रह करना बड़ा कष्टकारी है। भोग के इस निश्चय के नाश से भोग नहीं होना चाहिए, ये गलत हो गया, भोग नहीं है, भोग शब्द है ही नहीं वो। इस निश्चय के नाश से, हाँ योग होना चाहिए, भोग नहीं होना चाहिए, योग के इस निश्चय के नाश से योगी पुनः विषय भोग में निमग्न हो जाता है और उसके संसार का क्षय नहीं होता, अर्थात प्रणश्यति। अब एक मेरा प्रश्न है, यहां तो लिख बोल रहे हैं भगवान प्रणश्यति और एक जगह बोलते हैं कि नामे भक्त प्रणश्यति, तो ये क्या मतलब है, क्या उत्तर है? माइक बहुत दूर है, इतनी दूर से तो नहीं बोल पाएंगे, क्या उत्तर होगा? दीजिए माइक दीजिए। एक तरफ आप यहां बोल रहे हैं प्रणश्यति और वहां बोल रहे हैं नामे भक्त प्रणश्यति, बहुत बहुत सोच के उत्तर देना पड़ेगा आपको, बहुत सोच के उत्तर देना पड़ेगा, प्रश्न कठिन है।
यहाँ पे योगी का वर्णन आ रहा है जो भगवान कृष्ण की भक्ति में नहीं लगा हो, और एक जो है कि वहाँ पे भगवान करके जो भक्ति में लगा,
मुझे पता है मैंने बहुत टफ प्रश्न किया है।
एक चीज होती है कि जैसे कि जो प्रणश्यति किसके
में समझा दूं, ये जो सिद्धांत है ध्यायतो विषयान पुंसा, ये सभी योगियों पे है, चाहे भक्ति योगी हो चाहे कोई भी हो, लेकिन फिर भी भगवान बोल रहे हैं नमे भक्त प्रणश्यति। यस,
क्योंकि वो भक्त लगातार भगवान की भक्ति करता रहता है चाहे कुछ भी हो उसके पथ पे, और जो उससे गलतियां होती वो गलती से गलती हो जाती है, इट इज नॉट लाइक उसने विचार नहीं किया उस गलती करने का, गलती से गलती हो जाती है, लेकिन यहाँ पे पूरा ध्यान तो उस पर पूरा उस पर अभिनिवेश है और वो उस चीज को कर रहा है।
देखिए गलत नहीं बोल रहे हैं आप, सही कह रहे हैं, लेकिन एक बात बहुत सिंपल सी है कि जिसने एक बार भक्ति का रस का आस्वादन कर लिया तो वो कदाचित इस प्रकार से ध्यायतो विषयान पुंसा करके गिर भी जाए। हमने याद बिल्कुल अच्छे से डिस्कशन किया था 6333 में कि उसको वह रस अब उनमें प्राप्त नहीं होगा, वो भले ही फिर से उसी भोग में पड़ भी जाए, अपराध कर दिया किसी कारण से, उसको वो रस प्राप्त नहीं होगा जो उसे पहले तथाकथित रूप से वह मान रहा था कि रस है। ये बात समझ में आ रही है? वो न्यूज़पेपर भी मान लो पढ़ने लग गया, क्या बोरिंग है, तो सब झूठ है, मैं पहले से मालूम है, इतना क्लास सुन लिया है, जगत में जगत का जो टेम्परेरीनेस है क्या इसके बारे में बात करना, कौन प्राइम मिनिस्टर बना कौन ये बना, उसकी रुचि समाप्त हो गई। तो अंदर से भगवान, इसको हम लोग भगवान ने कभी चाहा तो चर्चा करेंगे, नारद मुनि स्पष्ट बोलते हैं बार बार वह भक्ति के रस का को याद करता है कि मैं भक्तों के संग में भक्ति करता था कितना अच्छा होता था, तो फिर भगवान उसको भक्ति में लेके आएंगे। लेकिन हाँ ये जरूर हो सकता है इस प्रकार से रहेगा तो उसे कुछ और जन्म लेने पड़ सकते हैं, ये एक मतलब। यस प्रभु,
जैसे अजामिल के केस में ये प्रणश्यति को कैसे लेंगे, क्योंकि उसको तो रस का याद था नहीं, तो भगवान ने कृपा करके उसको बेटे का नाम नारायण रखा दिया और संकेत बस पर जो है उसका जो है उद्धार हो गया, तो इतने साल तो उसके 70-80 साल।
देखिए आपने अच्छा प्रश्न किया है, अजामिल के केस में एग्जैक्टली ये श्लोक पिछला वाला 62 वाला अप्लाई होता है। उसने वेश्या को देखा, अब बार 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 वह उसी का चिंतन कर रहा था, अब उसकी पूरी बुद्धि नष्ट हो गई एकदम एग्जैक्टली। यहीं पे जैसे श्लोक अप्लाई कीजिए कि मुझे इंद्रिय सेम करना है, मैं ब्राह्मण हूं, मुझे वेश्या का संग नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भूल गया वो। लेकिन भगवान ने कृपा करके जैसे बच्चे का नाम नारायण दिलवाया, उस समय बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है निरीक्षमाणा तल लीला, उसका चित्त वेश्या में नहीं था, अपने बच्चे पे था। महाराज जी समझाते हैं बड़ा स्पष्ट है, नारायण नारायण बोल रहा था बड़े अफेक्शन से, और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी बोलते हैं बड़ा स्पष्ट, पहली बार जब उसने नारायण बोला तो सारे पाप नष्ट हुए और जितनी बार वो अगली बार नारायण बोल रहा था उसकी भक्ति अनजाने में बढ़ रही थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं इसको फिर से आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, अगर हम अपराध नहीं करते हैं, नाम केवल बोलते मात्र हैं, तो आप अकस्मात रूप से भक्ति के प्रति आकर्षण अनुभव करने लगते हो जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मेरी बातें समझ अनुभव कर रहे होंगे, समझाने की जरूरत ही नहीं, शुरुआत उनको पता भी नहीं होता कि हरे कृष्णा क्यों करना है, लेकिन भक्त बड़े चतुर होते हैं कि एक माला तो कर ही सकते हैं, हाँ एक माला तुम कर सकते हैं, करते करते हमारी भक्ति बढ़ने लगती है और भक्ति बढ़ने लगती है तो भक्ति का स्वाद भी मिलने लगता है। ये बड़ा स्पष्ट रूप से बताया गया कि जितने भी उसने नारायण और बोले वह उसकी भक्ति को बढ़ा रहे थे, क्योंकि वो अपराध कुछ नहीं कर रहा था, और बाद में फिर यही भगवान ने कृपा करके चार विष्णु दूतों को तो भेजा ही था। देखिए इसके पीछे क्या भगवान का आयोजन नहीं लगता कि यमराज जी गलती किए, यमराज यमदूतों को भेजे, फिर उसके बाद उसके मुंह से नारायण बुलवाया, वो भी आश्चर्यचकित हो रहा था। तो खैर जो व्यक्ति भगवान का नाम उच्चारण करता है भगवान उसकी हमेशा रक्षा करता है। प्रश्न में हो गया कुछ या कुछ त्रुटि रह गई उत्तर में?
इसमें आप जैसे आपने भी कहा था कि उसको जो है भक्ति का रस याद रहता है,
हाँ, लेकिन उसने भक्ति नहीं करी थी। ध्यान देना चाहिए कि उसने स्वरूप सिद्ध भक्ति का आश्रय नहीं लिया था। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर समझाते हैं,
और उसको अफसोस,
भक्ति जैसे वर्णाश्रम के संग थोड़ी बहुत की जाती है साइड में, उसे गौण भक्ति कहा जाता है, उस रूप से कर रहा था।
और वो पश्चाताप भी नहीं कर रहा था, बाद में उसने किया, लेकिन सौवरी मुनि के जैसे केस में है कि वो पश्चाताप करते हैं, बाद में उनको रिलाइज होता है और वो अपने आप को धिक्कारते हैं कि मैंने इतना साल जो है वो,
हाँ, तो ये आप देखेंगे कि अजामिल ने भी पश्चाताप किया,
वो बाद में जब विष्णु दूतों का कन्वर्सेशन उसने
सुना, तो हुआ ना पश्चाताप, तो हुआ ना उसको। मुझ भगवान की शरण में आए बिना इंद्रियां दुर्बल मन को उसके विषयों से जोड़ देती हैं, तो स्पष्ट है। क्यों? क्योंकि मन के लिए कोई हायर गोल नहीं है, उच्चतर गोल नहीं है। अतः जो मन पर विजय प्राप्त करना चाहता है, ही नहीं होना चाहिए, चाहता है, उसे भगवान कृष्ण की पूजा करनी ही होगी। बड़ा स्पष्ट है। एक छोटा सा कमेंट है, श्लोक 60 में कहा गया था कि इंद्रियां मन को जबरदस्ती इंद्रिय विषय में ले जाती, श्लोक 62 से 63 में ऐसा हो जाने के प्रभाव को कहा गया। ये प्रार्थना भगवान से करना चाहिए। भगवान श्रीमद् भागवतम, ब्रह्मचारी और हर भक्त को प्रार्थना कर सकते हैं, श्रीमद् भागवतम हरि नाम, इसमें मेरी मति लगे, इसमें मैं अब्सॉर्ब रहूं, डूबा रहूं, भगवान ऐसी कृपा कीजिए। बड़ा खुश होते हैं भगवान ऐसे, इतना सुंदर है श्रीमद् भागवतम, आप उसकी चर्चा करने लग जाएं, आपके आपके कथा में, मैंने कल भी बता रहा था, कथा में और हरिनाम में मेरी मति लगी रहे, वैष्णव सेवा में मति लगी रहे, उससे मति हटे नहीं, भक्तों के अपराध नहीं बने, ये हमसे आप हमको ऐसी प्रेरणा दीजिए, ये बात रकम से रखना चाहिए, इससे बहुत तेज प्रगति होती। ठीक है, तात्पर्य को पढ़िए। श्रील रूप गोस्वामी ने हमें यह आदेश दिया है, कानपुर से आए हुए अनुपम कृष्ण प्रभु जी।
श्री रूप गोस्वामी ने हमें आदेश दिया है,
प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुना मुमुक्षु भी परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। ये समझ लेना चाहिए इसका अर्थ, प्रापंचिकतया जगत प्रपंच ये भौतिक मानना, क्या हरि संबंधी वस्तुना, जो वस्तु में हरि के संबंध में है उनके प्रति प्रापंचिक बुद्धि करना कि ये तो भौतिक हैं और इस कारण से इसको त्याग देना, ऐसा मुमुक्षु उसका वैराग्य फल्गु कथ्यते, फल्गु कहा जाता है, शुष्क वैराग्य है,
झूठा
वैराग्य। यस, पढ़िए।
कृष्ण भावनामृत के विकास से मनुष्य जान सकता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जा सकता है।
यस, यानी कि ये जगत माया नहीं है, तो माया क्या है? माया जो नहीं है, तो जगत माया तो नहीं है कि है,
हमारे विजन के ऊपर डिपेंड करता है।
तो क्या विजन माया है?
हर चीज को अगर हम भगवान से देखते हैं,
एक सर कांग्रेगेशन बताइए, चलिए इनके पास,
जो चीज कृष्ण से कनेक्टेड नहीं है वो माया है।
अच्छा, अब इन्होंने बोला जो चीज कृष्ण से कनेक्टेड नहीं है वो माया है, अभी बताइए कौन सी चीज कृष्ण से कनेक्टेड नहीं है।
हम इस तरह से देख रहे थे, ये हॉल को ही अगर,
यस, हर वस्तु भगवान की ही है, तो अगर हम भगवान के संग देख रहे हैं तो माया से प्रभावित नहीं है। अच्छा, अगर भगवान के संबंध में नहीं देखेंगे तो कैसे देखेंगे?
अपने भोग के लिए,
अपने भोग के लिए देखेंगे, तो ये माया है, इसको त्याग दीजिए। यस,
जो कृष्ण भावनामृत के ज्ञान से रहित है वे कृत्रिम ढंग से भौतिक विषयों से बचने का प्रयास करते हैं, फलतः वह भव बंधन से तथा कथित वैराग्य फल्गु अर्थात गौड़ कहलाता है। इसके विपरीत कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में किस प्रकार किया जाए, फलतः वह भौतिक चेतना का शिकार नहीं होता। उदाहरणार्थ निर्विशेषवादी के अनुसार भगवान निराकार होने के कारण भोजन नहीं कर सकते, अतः वह अच्छे खाद्यों से बचता रहता है, किंतु भक्त जानता है कि कृष्ण परम भोक्ता हैं और भक्ति पूर्वक उन पर जो भी भेंट चढ़ाई जाती है उसे वे खाते हैं, अतः भगवान को अच्छा भोजन चढ़ाने के बाद भक्त प्रसाद ग्रहण करता है। इस प्रकार हर वस्तु,
एक मिनट से पहले तो समझ लेते हैं, छोटी बहुत टीका कर देते हैं, बड़ी मजेदार बात है। अभी एक समय में एक स्टूडेंट ज्वाइन किए आश्रम और देखा ब्रह्मचारी लोग खूब गिरिराज जी का राइस बना बना के खा रहे, तो उसके मन में बड़े अश्रद्धा हो गई, कहते रहे इनके संग रहूंगा, पकौड़े थे ये वो, और खुद भी पकौड़े खा रहा था वो। तो उसने कहा इनके संग रहूंगा तो मैं बिगड़ जाऊंगा, मैं वैराग्य कैसे होऊंगा। तो फिर उसने आश्रम छोड़ दिया। तो ये बहुत खतरा है, इसी को कहा जाता है फल्गु वैराग्य। या फिर कभी कभी नए भक्त सोचते हैं कि अब हम 5 घंटे ही सोएंगे, 5 घंटे ही सोएंगे और बाकी 2 घंटा जप में सोएंगे। तो 7 घंटे इस प्रकार से नींद पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो ये नहीं करना चाहिए। हमें आज्ञा क्या मिल रही, युक्त आहार। आप देखो आपके शरीर के लिए कितना आवश्यक है। ऑब्वियसली 10 घंटे भी नहीं कोई बात होती, लेकिन कोई बाकी 12 घंटे सो रहा है तो चलो भाई 10 घंटे पे आ जाओ, 6 घंटे 7 घंटे जो आपके लिए आवश्यक है वह पूरा कर लीजिए। या कभी कभी लोग कहते हैं हम 2 ही रोटी खाएंगे। मेरा अनुभव है, जब मैंने ज्वाइन किया था, हमारे साथ में भक्त ने ज्वाइन किया, वो 1 टाइम खा रहे थे। तो कार्तिक का समय था, हमने कहा प्रभु जी थोड़ा सर्विंग कर सकते हैं, कहते नहीं प्रभु जी मैं कमजोरी आ गई है, मैं 1 टाइम खा रहा हूं। तो फिर तुम्हारे वैराग्य का क्या वैल्यू है, वैष्णव की सेवा नहीं हो रही तो क्या वैल्यू है। एक छोटी सी कथा मैं श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी की बताना चाहूंगा, बड़ी गंभीर है। आप शायद जानते हो, वह बड़ा कोई महत्वपूर्ण लेख लिख रहे थे और उनके ही जहां वो बैठे थे उसके बगल में ही एक छोटा सा कह सकते हैं गोडाउन था, केले का गोडाउन, केला का भंडार। तो वहां से एक बंदर केला छीन करके भागा, चुरा के भागा, 1 केला जो होगा 2 केला। और उस समय आप जानते हैं डुबो डुबो के लिखने वाला सिस्टम हुआ करता था, तो वह जोर से उसको दौड़ मतलब रोकने के लिए उठे, तो उससे सारा जो लेख था वो डिस्टर्ब हो गया। तो उससे पहले वो मतलब क्लास में बता रहे थे वैराग्य के ऊपर कि हमें इस जगत में किसी भी वस्तु से आसक्त नहीं होना चाहिए। तो एक भक्त ने पूछा ये क्या किया आपने, 2 केले बचाने के लिए अपना लेख डिस्टर्ब कर दिया। तो उन्होंने कहा कि मूर्ख तुमको पता नहीं है वो केले राधा रानी के हैं, वो कृष्ण की सेवा में नियोजित हो रहे। तो किस प्रकार से, और अगर आप विचार करेंगे उनके बारे में सुनेंगे तो आप चकित हो जाएंगे। मैं बोल देता हूं आप चकित हो जाएंगे। हमें खैर उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए कि कुछ जो मजदूर मंदिर बना रहे थे उनके लिए बीड़ी खुद वो रोल करके देते थे। ये हालत हम लोग कल्पना नहीं कर सकते कि आचार्य किस प्रकार सोचते हैं। यहां तक कि अब ये बोलूंगा तो विश्वास ही नहीं होगा, कुछ इंग्लिश लोगों को, जेंटलमैन लोगों को प्रचार करने के लिए बुलाया गया, तो उन्होंने छोड़ दीजिए बता दूं मांस पकवा करके उन्हें खिलवाया कि वो मांस भी खाएं, आए और कृष्ण के बारे में सुने। ये हमें बिल्कुल अनुकरण नहीं करना चाहिए, अचिंत है। यहां तक कि इतने बड़े आचार्य होकर के जो ब्रह्मचारी थे उनके लिए स्वयं मच्छरदानी लगाते थे ताकि ये लोग जाकर के पुस्तक वितरण करेंगे। क्या भाव है, बहुत अद्भुत, बहुत एलिवेटेड भाव है, बहुत एलिवेटेड भाव। खैर ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया, हमें अपने लेवल पे देखना चाहिए कि कैसे हम हर वस्तु का उपयोग केवल कृष्ण के लिए ही करें, बहुत इंपॉर्टेंट बात। और दूसरों को भी सिखाना है। ये तथाकथित वैराग्य नहीं कर सकते कि सब लोग छोड़ के आश्रम ज्वाइन कर लो, ऐसा नहीं हो सकता। जो व्यक्ति जिस स्थान पे है उसको आप ट्रेनिंग दीजिए कि वो कैसे अपनी वस्तुओं को भगवान की सेवा में उपयोग करे, और कोई लिमिट नहीं है। बढ़िया।
इस प्रकार हर वस्तु प्राणवान हो जाती है और अधापतन का कोई संकट नहीं रहता।
प्राणवान मतलब स्पिरिचुअलाइज्ड हो जाती है। ये ध्यान देना चाहिए कि ये माइक स्पिरिचुअल नहीं हो जाता है, ये मेरी लेक्चर कभी नहीं सुन पाएगा, लेकिन ये स्पिरिचुअलाइज हो जाता है। अर्थात ये है, बहुत ध्यानपूर्वक बात सुनिए, जब हम वस्तुओं का उपयोग भगवान के लिए करते हैं तो वो स्पिरिचुअलाइज हो जाती हैं, अर्थात उनके उपयोग से हमें कर्म बंधन नहीं लगता। एक दूसरा, उनको उपयोग करने से भी हम कर्म बंधन से मुक्त होते चले जाते हैं। वो वस्तुएं तो वो भौतिक ही रहेंगी, वो उसमें कोई चेतना नहीं आ जाएगी, लेकिन वस्तुओं का उपयोग करने से हम आध्यात्मिकता में आगे बढ़ जाएं। पढ़िए आगे।
भक्त कृष्ण भावनामृत में रहकर प्रसाद ग्रहण करता है, जबकि अभक्त इसे पदार्थ के रूप में तिरस्कार कर देता है।
कुछ लोग बोलते हैं खाना तुम लोगों को है, ठाकुर जी को भोग लगा रहे हो। सुना आपने, कई बार ऐसे बोलते खाना तुम लोगों को है, रसगुल्ले खाने ये खाने या बस भोग लगाने का दिखावा कर रहे, ऐसा बोलते हैं, वो समझ नहीं पाते। यस।
अतः निर्विशेषवादी अपने कृत्रिम त्याग के कारण जीवन को भोग नहीं पाता और यही कारण है कि मन के थोड़े से विचलन से वह भव कूप में पुनः आ गिरता है।
तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, जिस व्यक्ति को उच्चतर रस प्राप्त है फिर वो निम्नतर रस को प्राप्त नहीं करता है, लेकिन कोई रस नहीं मिला और चुपचाप बैठे रहो तो फिर दिक्कत आती है। जैसे भूख होती है तो आदमी सूखा चना भी खा लेते है ना, और अब 2 बजे आप लोगों ने फीस्ट खाया उसके बाद बोले भाई ये चीना चना लेंगे, नहीं, ये स्थिति कृष्ण भावना।
Yes. मतलब प्रभु जी अपनी इच्छाओं को सप्रेस नहीं करना चाहिए।
यस हाँ ऑब्वियसली गलत इच्छाओं से को जुआ को हम कैसे करेंगे। तो चार जो नियम है उसको तो हमें ठीक से पालन करना है, लेकिन प्रभुपाद जी लेकिन यहाँ बोले कोई व्यक्ति शराब पीता था तो बोले तुम शराब में भी देखो कि अंगूर कृष्ण से आया है तो कम से कम तुम्हें स्मरण होगा कृष्ण की। ये देखिए आचार्य लोग इस प्रकार से कर सकते हैं, हम लोग तो ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम शुरुआत करना चाहिए और जो बुरी चीजें हैं उनको उनको तो त्यागना ही चाहिए। इच्छाओं को सप्रेस करने का बहुत आपने अच्छा बात बोली है। मान लो आप लोग को आपको प्रचार करना अच्छा लगता है तो अब ये नहीं कि 10 साल वेट करो, वेट लिस्टिंग में आओ उसके बाद तुम प्रीचिंग करना शुरू करो, ये नहीं होना चाहिए। हाँ किसी को मान लो ठाकुर जी की सेवा करने की इच्छा हो रही तो कोई दिक्कत नहीं। प्रभुपाद जी से एक बार एक शिष्य ने पूछा कि मैं आपके लिए क्या करना कर सकता हूँ, तो प्रभुपाद जी बोले कि तुम क्या करना चाहते हो, समझ आई बात, कि तुम क्या करना चाहते हो और उसके अनुसार प्रभुपाद उनको सेवा में नियोजित कीजिए। अभी भी कुछ लोग बोलते हैं कि पहले इमरजेंसी थी अरब नहीं है, क्या अभी नहीं है, पूरा जगत में कृष्ण भावना स्थापित हो गई है क्या? कोई नहीं बोल सकता कि खाली हमारा हम लोग का इल्यूजन है कि हम सोच रहे हैं कि पूरे जगत में कृष्ण भावना स्थापित होगी। दिल्ली में बहुत से लोग उसको उनको नहीं जानते होंगे, होंगे ऐसे, ये हरे कृष्ण मंत्र क्या है, लखनऊ में 1995 से इस्कॉन है, मुझे तो हरे कृष्ण मंत्र 2002 में कहीं साउथ इंडिया में जाके मालूम चला। तो ये हमारा बहुत बड़ा इल्यूजन है कि हम सोचेंगे कि सबको हरे कृष्ण मंत्र मालूम चल गया। कहने का अर्थ है अभी भी इमरजेंसी है, अभी भी बहुत लोग मर रहे हैं जिन्हें बिना हरे कृष्ण मंत्र प्राप्त किए बिना। तो भक्तों को क्या कहते हैं राइज टू द ओकेजन समझते हैं, मतलब इसे युद्ध हो रहा है तो छोटा सैनिक भी बस तोप चला देता है, उस तरह से साहस करके प्रचार करना चाहिए। ये एकदम घर की बहू नहीं बन रहे कि हम दहलीज को क्रॉस ही नहीं करेंगे, प्रचार करेंगे नहीं, जब पूरा प्रकांड परमहंस बन जाएंगे तब प्रचार करेंगे, ये नहीं। प्रभुपाद जी बोलते हैं वन शुड ट्राई टू बिकम एज परफेक्ट एज पॉसिबल, जितना परफेक्ट हो सकते हो और प्रचार करो। एक बात मैं अवसर पर आके बोल रहा हूं कि हमें अपने जीवन में जब हम इस प्रकार से प्रचार करते ना, ये देखिए कि हम अपनी कही हुई बातों को कितना अपने जीवन में उतार रहे हैं, और जब आप सब बोलेंगे तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस रहेगा वो बोलने के लिए। ज्यादा ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, जितनी शिक्षा हम दूसरों को दे रहे हैं हो सकता है हम पूरा नहीं अप्लाई करें, प्रयास करें कि हम उसको अपने जीवन में बड़े अच्छे से उतारें, बड़ा सरल सच्चा जीवन हो जाता है। ये नहीं कि हम दूसरों को बोल रहे हैं और मन में फिर आपके खालीपन लगेगा मैं तो नहीं कर रहा, दूसरों को क्या बोल रहा हूं। हाँ ये बहुत बहुत चाहे ज्यादा चीज ना कर पाओ लेकिन जो कर रहे हैं उसको वही उतना बताने का प्रयास कीजिए। ऐसा तो नहीं आप कुछ भी पालन नहीं कर रहे, isn't it? Yes.
कहा जाता है कि मुक्ति के स्तर तक
स्तर नहीं होना चाहिए टाइपिंग एरर है,
मुक्ति के स्तर तक पहुंच जाने पर भी ऐसा जीव नीचे गिर जाता है।
पता है क्यों होता है? श्लोक है आरुह्य कृच्छे न प्रदम परम पदम तथा पतंती, प्रभात बड़े साथ ऐसा लगता है गिरा रहे हो, पतंती नीचे गिर जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण के चरण कमलों को भौतिक मानता है। यस
क्योंकि उसे भक्ति का कोई आश्रय प्राप्त नहीं मिलता।
ठीक है कोई प्रश्न है? मोह मोह मतलब हमने सीखा ना, मोह का अर्थ है कार्य अकार्य का विवेक, क्या चीज करने लायक है और क्या मुझे करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये उसका विवेक नहीं रहता। भाई जैसे सिंपल सी बात है, आज मैंने प्रभु जी को पूछा आपने सुबह कुछ खाया नहीं, तो ने कहा नहीं प्रभु जी मैं प्रसाद के अलावा कुछ नहीं खाता, तो अब ये विवेक इनमें डेवलप हो गया कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, जो भी सामने आ जाए वो खाना चाहिए, है ना? नहीं, नहीं। तो ये, अच्छा जब भी सामने आ जाए तब खाना चाहिए? नहीं। तो ये विवेक हो गया ना कि कब खाना है और क्या खाना है, इसमें विवेक हो गया कि नहीं, कैसे बर्ताव करना चाहिए, सीनियर से कैसे बर्ताव करना चाहिए, नीचे सब सब विवेक हो गया ना, कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है इसका विवेक। हाँ अब हम थोड़ा सा भगवान के नाम के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। देखिए अभी हमने आपके टीका खोल ली जिसमें क्या लिखा हुआ है एकदम स्पष्ट, मोह मतलब इल्यूजन, आपको समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है, कारण आसक्ति हो सकता है जैसे हमने देखा था, लेकिन क्रोध के कारण ही मोह उत्पन्न होता है, उसे पता नहीं क्या हो रहा है। मोहन बोल रहे हैं ना, क्रोधात भवति सम्मोह, इजंट इट, और क्या कारण है, कुछ गलत है गीता में? आप श्लोक देख लीजिए,